ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले खास खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और हतमी मरहले के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल। चुनाव अमला और मिशनरी पहुंचे मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर। कल के मरहले में 39,18,000 राय दहंदगान करेंगे 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने असेंबली इंतखाबात के बाद कानून साज असेंबली के इजलास के सिलसिले में श्रीनगर असेंबली कम्पलेक्स में लिया तैयारियों का जायजा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में अमन कानून बरकरार रखने और इक्तसादी व सामाजिक ढांचे को तकवीत बख्शने में इंडियन पुलिस सर्विस के रोल को किया उजागर। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और हतमी मरहले के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। चुनाव अमला और मिशनरी पोलिंग मराकज तक पहुंचाया गया है। इस मरहले के तहत कल यूटी के 40 हलकों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पुरमन शफाफ और आजादाना चुनाव यकीनी बनाने के लिए सलामती के माकूल इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग मराकज पर राय दहंदगान के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखी जा रही हैं। कल के मरहले के तहत 39,18,000 राय दहंदगान अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के अहल होंगे, जो कुल 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इस मरहले के ताल्लुक से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग का अमल शुरू होने में अब महज 11.5 घंटे का वक्त रह गया है। जम्मू कश्मीर के 7 अजला में फैली 40 असेंबली नशस्तों के लिए वोट डालने का अमल कल सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जिन हलकों में वोटिंग होगी उनमें कश्मीर सूबे के बारामुल्ला जिले के 7, कुपवाड़ा के 6 और बांडीपोरा के 3 हलके शामिल हैं, जबकि जम्मू सूबे के कठुआ जिले के 6, उधमपुर के 4, सांबा के 3 और जम्मू जिले के 11 हलकों में भी वोटिंग होगी। 40 हलकों के अहल राय दहंदगान की मजमुई तादाद 34,09,102 है, जो कल अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके इंतखाबी अखाड़े में उतरे 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद करेंगे। राय दहंदगान बगैर किसी दिक्कत के अपना वोट दे सकें, इसके लिए कुल 5,060 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिन पर पीने का पानी, वेटिंग शेड, बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया है। इस मरहले में दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मखसूस रखी गई सभी 7 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस 9 नशस्तों में से एक नशस्त पर भी कल ही वोट डाले जाएंगे। कल के चुनाव मरहले में जो उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं उनमें कई साबिक वुजरा और कानून साजों के अलावा कई मारूफ सियासी चेहरे भी शामिल हैं। कल के चुनावी अमल के लिए इंतजामी सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पोलिंग अमला और मवाद पोलिंग मराकज पर पहुंचाया जा चुका है। कल के मरहले के साथ ही जम्मू व कश्मीर में कानून साज असेंबली की तश्कील के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अवाम का फैसला किन 90 उम्मीदवारों के हक में होगा, इसके लिए हम सबको 8 अक्टूबर तक मुंतजिर रहना पड़ेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि पहले 2 मरहलों में मजमुई तौर तकरीबन 60% वोटिंग दर्ज की गई और उम्मीद है कि कल के मरहले में भी राय दहिंदगान इस जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी शोबे खबर के लिए श्रीनगर से मुख्तार अहमद के साथ मैं सैयद मुबशर रुफाई।
तीसरे और आखिरी मरहले के तहत जो उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं उनमें खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्ला, चौधरी मोहम्मद रमजान, नासिर असलम वानी, पीडीपी के सैयद बशारत बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, इमरान रजा अंसारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद के मुश्तरक उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट, अपनी पार्टी के गुलाम हसन मीर, बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा, आरएस पठानिया, गुरुराम भगत, कांग्रेस के रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह और कुछ दीगर आजाद उम्मीदवारों के नाम काबिले जिक्र हैं। 7 जिलों में फैले 40 हलकों में 5,060 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 974 शहरी इलाकों जबकि 4,086 देही इलाकों में कायम किए गए हैं। राय दहंदगान की शिरकत को बढ़ाने के लिए 7 जिलों में 240 खसूसी पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। इसके अलावा 50 पोलिंग मराकज पर खवातीन अमला तैनात रहेगा, इन्हें पिंक पोलिंग स्टेशन कहा जाता है। 43 पोलिंग मराकज पर जिस्मानी तौर खास अफराद जबकि 40 पर नौजवान सारा नज्म नस्क संभालेंगे। माहौलियाती बेदारी पैदा करने के लिए 45 ग्रीन पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 29 पोलिंग स्टेशन لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد کے نزدیک رہنے والے لوگوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں، نیز 33 پولنگ مراکز کو منفرد پولنگ اسٹیشنوں کا درجہ دیا گیا ہے۔ مائیگرنٹ ووٹروں کے لیے 24 خصوصی پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں جموں کے 19، دلی کے 4 اور ادھمپور کا 1 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس مرحلے کے تحت 20,000 سے زائد پولنگ عملہ ڈیوٹی پر تعینات رہے گا۔ ہر ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک پریزائڈنگ آفیسر سمیت 4 اہلکاروں کی ٹیم تعینات رہے گی۔ اسی دوران کشمیر زون کے آئی جی پی وی کے بردی نے پولیس کنٹرول روم سری نگر میں سینئر پولیس افسروں اور دیگر سراغ رساں ایجنسیوں نیز سیکیورٹی فورسز کے افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران خطے میں امن و قانون کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں موجود افسروں نے آئی جی پی کو کشمیر صوبے کی موجودہ سلامتی صورتحال اور اس میں درپیش چیلنجوں سے متعلق تفصیلی جانکاری دی۔ آئی جی پی کشمیر نے سبھی متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اپنے حد اختیار میں آنے والے علاقوں میں امن و قانون کی صورتحال میں کسی بھی طرح کے بگاڑ سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائیں۔ اسمبلی انتخابات کے صاف و شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جموں کشمیر الیکشن آفس نے 23 ملازمین کو معطل جبکہ 6 کنٹریکچول اور ایڈہاک ملازمین کو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے پاداش میں نوکری سے برطرف کیا ہے۔ اس کے علاوہ 20 ملازمین کے خلاف شکایت ملنے کے بعد ان کو موجودہ پوسٹنگ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ الیکشن آفس نے یہ بھی کہا کہ پولیس محکمے نے رواں الیکشن کے دوران تقریباً 130 کروڑ روپے بھی ضبط کیے ہیں۔ پی کے پولے نے کہا کہ رواں الیکشن کے دوران مختلف سیاسی پارٹیوں کو قریب 7,088 الیکشن ریلیوں کی اجازت دی گئی۔ چناؤ کمیشن نے سبھی پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا اداروں کو جموں کشمیر میں جاری اسمبلی انتخابات کے حوالے سے 5 اکتوبر 2024 شام 6 بجے کے بعد سے ایگزٹ پول مشتہر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چناؤ کمیشن نے عوامی نمائندگی سے متعلق ایکٹ 1951 کے سیکشن 126A کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 31 اگست 2024 کو جاری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے ذرائع ابلاغ کے اداروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے تحت جرمانہ یا جیل بھی ہو سکتا ہے۔ 31 اگست کو چناؤ کمیشن نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے حوالے سے ایگزٹ پول شائع یا نشر کرنے پر پابندی عائد کی تھی، تاکہ چناؤ عمل کی شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بناتے ہوئے صاف و شفاف انتخابات عمل میں لائے جا سکیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں قانون ساز اسمبلی کا دورہ کر کے یوٹی میں جاری اسمبلی انتخابات کے بعد منعقد ہونے والے اسمبلی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں اسمبلی ہال، میٹنگ ہال اور دیگر چیمبرز کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ آسن کام کاج کے لیے دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے کمیونیکیشن نیٹ ورک میں بہتری لانے کی بھی ہدایات دی۔ انہوں نے کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے جموں اور سری نگر شہروں میں ایم ایل اے ہاسٹلوں پر ہو رہے تجدیدی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام موجودہ اسمبلی انتخابات پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی مکمل ہونے چاہیے۔ اسٹیٹس محکمے کے ڈائریکٹر طارق احمد غنائی نے چیف سیکرٹری کو ہاتھ میں لیے گئے کاموں کے بارے میں جانکاری دی۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس تاشی ربستان نے آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے 37 چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے اس مہینے کی 27 تاریخ کو عہدے کا حلف لیا تھا۔ جموں ہائی کورٹ پہنچنے پر ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل شہزاد عظیم نے ان کا رسمی طور استقبال کیا اور اس موقع پر عدلیہ سے جڑے کچھ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس کے اعزاز میں ہائی کورٹ کی جموں شاخ میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ انڈین پولیس سروس کے 2023 بیچ کے پروبیشنروں کا ایک گروپ آج راشٹرپتی بھون نئی دلی میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات ہوا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے پروبیشنروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف آل انڈیا سروسز میں انڈین پولیس سروس کو اپنے آپ میں ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و قانون صرف حکمرانی کا ہی خاصا نہیں ہے بلکہ اسے جدید ملک میں بنیاد کی حیثیت ہے۔ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت آنے والے برسوں میں نئی بلندیوں کو چھونے کی کوششیں کر رہا ہے اور اس صورتحال میں آئی پی ایس افسروں کا رول مزید اہم بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اور سماجی ترقی امن و قانون بہتر ہونے کی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے۔ سرکردہ اداکار متھن چکرورتی کو اگلے مہینے 70वें कौमी फिल्म अवार्ड्स तकरीब में दादा साहब पालखे अवार्ड्स से सरफराज किया जाएगा। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह ऐलान करते हुए कहा कि कोलकाता की गलियों से लेकर सिनेमा की बुलंदियों तक मिथन दा का काबिले कदर सफर आने वाली नस्लों को तहरीक देता रहेगा। उन्होंने कहा कि दादा साहब पालखे सिलेक्शन जूरी ने भारतीय सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती की गिराकदर देन और उनकी खिदमात के सिले में भारतीय सिनेमा का ये आला अवार्ड उन्हें देने का फैसला किया है। उधर मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने यह खबर मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने ये अवार्ड अपने अरकान खानदान और दुनिया भर के अपने मद्दाहों को वक्फ करने का ऐलान किया। वजीर अजम नरेन्द्र मोदी ने अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब पालखे अवार्ड से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सिनेमा में गिराकदर खिदमात को तस्लीम करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को इस आला एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें खुशी है। वजीर अजम ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती सकाफत के ताल्लुक से एक मुमताज शख्सियत हैं जिनकी बेहतरीन अदाकारी को नस्ल दर नस्ल पजीराई हासिल हुई है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने आलमी सतह पर लोगों को निशाना बनाकर की जाने वाली धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलव्वस इंतहाई मुनज्जम साइबर जराइम नेटवर्क के 26 बड़े कारंदों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने तकनीक पर मबनी बड़े जराइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए 32 मकामात पर तलाशी की मरबूत कार्रवाई के बाद इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 10 बड़े कारंदे पुणे के हैं जबकि 11 विशाखापट्टनम और 5 हैदराबाद से हैं। सीबीआई ने 950 से ज्यादा अशिया जब्त की हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आलात मोबाइल फोन लैपटॉप माली जानकारी मवासलाती रिकॉर्ड और काबिल एतराज मवाद शामिल हैं जिन्हें मुजरिमाना सरगर्मी और लोगों के साथ धोखादही के लिए साइबर जराइम नेटवर्क इस्तेमाल करता था। वजीर खारजा एस जयशंकर कल वाशिंगटन डीसी में अमरीका के अपने हमनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा मुख्तलिफ दुतरफा और आलमी अमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। इनमें यूक्रेन की लड़ाई और मगरबी एशिया का बहरान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर कल अमरीका के दौरे पर वहां पहुंचे हैं। वो बाइडन इंतजामिया के काबीना दर्जे के दीगर सरकर्दा अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। जमैका के वजीर अजम डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। खजाने के मरकजी वजीर ममलिकत पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। ये उनका भारत का पहला दौरा है और जमैका के किसी वजीर अजम का भारत का ये पहला बाहमी दौरा भी है। इससे पहले वजीर अजम नरेन्द्र मोदी और जमैका के वजीर अजम दुतरफा मुलाकातों के मौके पर कई बार मिल चुके हैं। इस दौरे में डॉक्टर हॉलनेस कल वजीर अजम नरेन्द्र मोदी के साथ वफद सतह की बातचीत करेंगे और सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे से उन्हें दीगर अहम शख्सियतों से मुलाकात करने और तिजारत और सन्नत की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान बहुत से मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। आसारी शरीफ पिंजूरा शुपैया में उर्से गौजुल आजम दस्तगीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में 4 अक्टूबर से खत्मातुल मुअज्जमात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस का आगाज होगा। दरगाह आलिया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उर्स के दौरान जायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इजाजत लेने से पहले खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और हतमी मरहले के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल। चुनाव अमला और मिशनरी पहुंचे मुतल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर। कल के मरहले में 39,18,000 राय दहिंदगान करेंगे 415 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला। چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اسمبلی انتخابات کے بعد قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے سلسلے میں سری نگر اسمبلی کمپلیکس میں لیا تیاریوں کا جائزہ، اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک میں امن قانون برقرار رکھنے اور اقتصادی و سماجی ڈھانچے کو تقویت بخشنے میں انڈین پولیس سروس کے رول کو کیا اجاگر۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔